उर्वशी ने आयशा को चेतावनी दे दी थी कि वो कुछ भी करके इशिका को घर से बाहर निकाले। आयशा जानती थी कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन इशिका पर उसका जोर नहीं चलने वाला था, इसीलिए उसने राधिका को अपना मोहरा बनाया। आयशा बहाने से सिंघानिया मेंशन आई और वहां जाकर राधिका को ये कहने लगी कि इशिका के साथ वहां बहुत बुरा हो रहा है। आदर्श भी आयशा का साथ दे रहे थे। उनकी बातों से राधिका को काफी नेगेटिव वाइब आई थी। तभी उसे याद आया, एक बार इशिका ने उसे ये कहा था कि वो आदर्श की बेटी नहीं है। पहले राधिका ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसने काफी सख्ती से आदर्श से सब कुछ पूछा। आदर्श ने कोई जवाब नहीं दिया तो राधिका ने उसका हाथ पकड़ा। उसने धीमी और सख्त आवाज में कहा, आदर्श, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, इशिका आपकी बेटी है या नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मेरी नज़रों में सिर्फ तुम्हारी बेटी ही मेरी बेटी है। बायोलॉजिकली वो लड़की मेरी बेटी हो सकती है, पर मैंने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। आदर्श ने काफी नरमी से जवाब दिया। आदर्श के बात करने के तरीके में ईमानदारी देखते हुए राधिका ने उससे आगे सवाल जवाब नहीं किया। आयशा को उनकी बातें समझ नहीं आई और ना ही उसको कोई दिलचस्पी थी। आदर्श से बात करने के बाद राधिका ने जब आयशा की तरफ देखा तो आयशा फिर से बोली, मॉम, इशिका आपकी बात मानती है तो आप उससे बात क्यों नहीं कर लेती? वहां काम करने वाले हाउस हेल्पर तक उसे छोटी नजरों से देखते हैं। राधिका हर एक पहलू पर गौर से विचार करने लगी। वो एक खुले विचारों वाली औरत थी। उसने कभी भी आयशा और इशिका दोनों की ही जिंदगी में इंटरफेयर नहीं किया और ना ही उनकी शादी के मामले में। हालांकि आयशा की हरकतों से वो काफी निराश हुई थी, लेकिन जब उन्हें इशिका के डॉक्टर मर्चेंट होने की सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ था, मानो उनकी खुद की बेटी ने उनका सिर ऊंचा कर दिया हो। राधिका ने आयशा से धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं इस मामले में कुछ करती हूँ, लेकिन पहले मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना परखना है। मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती हूँ। इतना कहकर राधिका ने अपना मोबाइल निकाला और इशिका को मैसेज लिखने लगी, इशिका, तुम आजकल कहाँ रहती हो? तुम्हारी शादी को भी काफी टाइम हो गया। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपने पति से मिलवाओगी, लेकिन अभी तक तुमने ऐसा नहीं किया है। मैसेज भेजने के बाद राधिका ने अपने मन में कहा, एक बार इशिका के पति से मिलकर तसल्ली कर लेती हूँ। अगर वो अच्छा इंसान हुआ तो दोनों को एक दूसरे को एक मौका देने को कहूंगी, लेकिन अगर वो इशिका के लायक नहीं निकला तो इन दोनों का तलाक करवाकर इशिका को आगे बढ़ने के लिए समझाऊंगी। राधिका सब कुछ काफी मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ इशिका को जब राधिका का मैसेज मिला तब वो वसुधा और अभिमन्यु के साथ लंच कर चुकी थी। सुबह जो भी हुआ था उसके बाद इशिका का मूड काफी बिगड़ा हुआ था। इशिका को परेशान देखकर वसुधा ने उसे अकेले नहीं छोड़ा और ना ही अभिमन्यु को वहां से जाने दिया। अभिमन्यु और इशिका इस वक्त वसुधा के साथ लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। वसुधा ने अभिमन्यु की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ लड़के, आज तुमने सबके सामने ये क्यों नहीं कहा कि यही तुम्हारी पत्नी है? इशिका ने जवाब देने के लिए अपना सिर उठाया। तभी वसुधा ने परेशान स्वर में कहा, कहीं तुम मेरी बहू को डिवोर्स देने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? अभिमन्यु कुछ पल रुका और फिर जवाब में बोला, नहीं दादी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अभिमन्यु से बात करने के बाद वसुधा ने इशिका की तरफ देखकर पूछा, और तुम अपना बताओ बहू, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं तुम तो तलाक लेने के बारे में नहीं सोच रही? इशिका जवाब देने से पहले झिझक रही थी। उसने महसूस किया कि अभिमन्यु की नजरें इशिका पर थीं। इशिका ने कुछ पल रुककर कहा, नहीं, मैं भी ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस मुझे यही सुनना था, वसुधा ने मुस्कुराकर कहा। और फिर अभिमन्यु और इशिका के हाथ एक दूसरे के हाथों में थमाकर बोली, पता है जिंदगी में उस इंसान का मिलना बहुत मुश्किल होता है जिसे आप पसंद करते हो, और उससे भी मुश्किल उस इंसान के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। पहले मैंने तुम दोनों को कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम दोनों समझदार नहीं थे। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो तो समझदार बनो और आगे की जिम्मेदारियां निभाओ, साथ रहो और किसी को भी अपने बीच दरार डालने का मौका मत देना, वसुधा उन्हें समझा रही थी, जबकि अभिमन्यु और इशिका एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इशिका ने महसूस किया कि अभिमन्यु काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो उसने अपना हाथ अभिमन्यु से अलग करने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु ने उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया था। आंखों ही आंखों में अभिमन्यु को कहा कि वो बाद में इस बात की सफाई ना दे कि उसने इशिका का हाथ क्यों पकड़ा था, वरना वसुधा के जाने के बाद वो यही बोलने वाला था कि उसने दादी के लिए इशिका का हाथ पकड़ा था। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी वसुधा ने उन दोनों के हाथ पर हल्का मारते हुए कहा, तुम दोनों कहाँ खोए हुए हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ लड़के, तुम मेरी बहू को पसंद करते हो ना? अभिमन्यु और इशिका का ध्यान टूट चुका था। अभिमन्यु ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि वसुधा उससे ऐसा सवाल पूछेगी। वही इशिका भी उसके जवाब के इंतजार में थी। अभिमन्यु ने कुछ पल के लिए जब कुछ नहीं कहा तो इशिका का चेहरा उतर गया था। अभिमन्यु को मुसीबत में फंसे देखकर इशिका ने बात बदलना चाहा, लेकिन तभी अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखते हुए इंटेंस वॉइस में कहा, हाँ दादी। अभिमन्यु के मुंह से हाँ सुनकर ईशिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। एक पल के लिए उसकी दुनिया वहीं थम गई थी और उसके कानों में अभिमन्यु की हाँ गूंज रही थी। अभिमन्यु के बाद अब ईशिका की बारी में वसुधा ने उसकी तरफ देखकर सेम ही सवाल पूछा, अब तुम अपना बताओ बहू, तुम भी इस लड़के को पसंद करती? वसुधा का सवाल पूरा होने से पहले ही ईशिका सब समझ गई थी। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, दादी दवाइयों का टाइम हो गया, आपको रेस्ट भी करना है। वसुधा ने उसकी बात पर हामी भरकर हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा समझ गई, तुम्हें बहुत शर्म आती है, ठीक है मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, साथ रहोगे तभी एक दूसरे से शर्म दूर होगी। उसके बाद वसुधा निवेदिता का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। वो निवेदिता से बड़बड़ाकर बोली, आजकल के लड़के लड़कियां कितने तेज होते हैं, लेकिन इन दोनों को देखो एक दूसरे से नजरें चुराते रहते हैं। कमरे के अंदर आने के बाद वसुधा और निवेदिता ने हल्का सा बाहर की तरफ झांक कर देखा तो अभिमन्यु और ईशिका अभी तक वहीं पर बैठे हुए थे। वसुधा ने धीरे से निवेदिता से पूछा, क्या लगता है मिसेज निवेदिता, आज ये दोनों अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे या नहीं? कुछ कह नहीं सकते मिसेज राजवंश, आइए मैं आपको दवाइयां दे देती हूँ, निवेदिता ने जवाब दिया और फिर वसुधा को बिस्तर के पास ले गई। वहीं बाहर अभिमन्यु और ईशिका अभी भी एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हो रहे थे। ईशिका ने एक नजर अपने सामने बैठे उस आदमी की तरफ देखा जो हर तरीके से उससे बेहतर नजर आ रहा था, एक हैंडसम सक्सेसफुल अमीर आदमी, जबकि वो एक सिंपल सी लड़की थी। इस तरह के लड़के ईशिका जैसी लड़की को कम ही पसंद करते थे तो ईशिका को कोई उम्मीद नहीं थी। ईशिका ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, आपने वो सब दादी को खुश करने के लिए कहा था ना? नहीं, अभिमन्यु ने धीरे से जवाब दिया। ईशिका ने सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। तभी उसके पास मिसेज राधिका सिंघानिया का मैसेज आया। मैसेज पढ़ने के बाद वो थोड़ा परेशान दिख रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अभिमन्यु ने पूछा। ईशिका ने मोबाइल की स्क्रीन अभिमन्यु की तरफ की और मैसेज दिखाते हुए बोली, आयशा से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जरूर अपने घर जाकर मिसेस सिंघानिया से उल्टी सीधी बातें की होगी। उसकी बातें मानकर मिसेस सिंघानिया यही चाहती है कि मैं घर जाकर उनसे बात करूं। उन सबको यही लगता है कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूं, तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत बन रही हूं।
ईशिका की बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर वही ना दिखने वाली स्माइल आ गई। उसने भौहें उठाकर पूछा, तो क्या सोचा है तुमने, तुम वहां जाने वाली हो? ईशिका मैसेज का रिप्लाई करते हुए बोली, हाँ जाना तो होगा ही, मैं वहां जाकर उनसे बात कर लूंगी। ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अभिमन्यु ने झट से जवाब दिया। ईशिका को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि अभिमन्यु उसके साथ जाने वाला है। उसने जल्दी से उसकी तरफ देखकर आंखें बड़ी करके पूछा, क्या? मैंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अभिमन्यु ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। उन्होंने कहा न कि वो तुम्हारे पति से मिलना चाहती है, तुम क्या किसी और को उनसे मिलवाने के लिए ले जाना चाहती हो? ईशिका के लिए सब कुछ काफी अनएक्सपेक्टेड हो रहा था। पहले अभिमन्यु ने उसे लाइक करने की बात कही तो अब वो उसके साथ जाने वाला था। ईशिका ने खुद को नॉर्मल रखा और कहा, ठीक है तो फिर मैं उन्हें मैसेज करके बता देती हूँ। हाँ फिर मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ गिफ्ट्स अरेंज कर लेता हूँ। तुम मिसेस सिंघानिया को अपनी माँ की तरह मानती हो तो अपनी सास से मिलने जाने के लिए खाली हाथ जाना सही नहीं रहेगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया। जब अभिमन्यु ने राधिका जी को अपनी सास कहा तो ईशिका की धड़कनें बेकाबू होने लगी, उसके गाल लाल हो रहे थे। उसने अपनी स्माइल को कंट्रोल करके मैसेज लिखा, ठीक है मैं आज रात आ जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ जब राधिका ने ईशिका का मैसेज देखा तो उसने राहत की सांस ली। उन्होंने मन ही मन कहा, थैंक गॉड ईशिका ने आने के लिए हाँ कर दी, वरना एक पल के लिए मुझे लगा कि वो सच में अपने पति को भूल चुकी है और अभिमन्यु राजवंश के साथ रहने का सोच रही होगी। राधिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और उन्होंने आदर्श की तरफ देखकर कहा, आज रात को ईशिका अपने पति के साथ आ रही है, मैं किचन में जाकर थोड़ी अरेंजमेंट देख लेती हूँ और मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ, तुम्हें इतनी तैयारी करवाने की क्या जरूरत है, तुम उसे और उसके फटीचर पति को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हो राधिका, आदर्श ने मुंह बनाकर कहा। राधिका पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने इशारे से श्रुति को किचन में जाने के लिए कहा तो वहीं अब आयशा के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। आयशा ने अपने मन में कहा, अच्छा तो तुम अपने उस सड़क छाप पति को सिंघानिया मेंशन लेकर आ रही हो, कोई बात नहीं ले आओ, आज रात मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी और तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद दिलाऊंगी ईशिका सिंघानिया, आयशा ने जल्दी से आदर्श और राधिका की तरफ देखकर कहा। मॉम मैं ऐसा करती हूँ कि नक्श को भी डिनर पर बुला लेती हूँ, मैं और ईशिका बहने हैं तो इस हिसाब से ईशिका के पति और नक्श का भी तो एक रिश्ता हुआ ना, कितना अच्छा लगेगा ना जब सारी फैमिली एक साथ होगी, आई एम सो एक्साइटेड। आयशा ने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत नक्श को मैसेज लिखने लगी, नक्श आज रात तुम हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रही हो ना? सामने से नक्श का कोई जवाब नहीं आया था, तभी राधिका ने आयशा से कहा, तुम फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रही हो ये अच्छी बात है और नक्श के यहाँ आने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे अच्छे से समझा देना कि वो ज्यादा गिफ्ट लेकर ना आए। आयशा को राधिका की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली, वो अभी भी इशिका का सोच रही थी ताकि आज रात नक्श के सामने इशिका और उसका पति छोटा न दिखे। यहाँ भी राधिका इशिका को सपोर्ट कर रही थी। ये देखकर आयशा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन तभी राधिका ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, आज का डिनर इशिका और उसके हस्बैंड के लिए है। मैं नहीं चाहती कि ऐसे में उनकी इंसल्ट हो और वो किसी भी मामले में नक्श से छोटा दिखें। राधिका इशिका को छोटा नहीं महसूस कराना चाहती थी। आयशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है मॉम, मैं नक्श को याद से बोल दूंगी। राधिका से बात करने के बाद जैसे ही आयशा ने मैसेज चेक किया, नक्श ने जवाब में लिखा था, मेरा मन नहीं है और वैसे भी मेरे पास बहुत काम है। आयशा जानती थी उसे क्या करना है। उसने तुरंत मैसेज लिखा, आज इशिका अपने पति के साथ डिनर पर आ रही है, मुझे लगा कि तुम्हें भी आना चाहिए, तुम उसे मिलना चाहते थे ना। इशिका के पति के आने की बात सुनकर नक्श ने झट से जवाब देते हुए पूछा, कितने बजे आना है। 6 बजे के आसपास, जल्दी आ जाओगी तो बेहतर होगा, आयशा ने कहा। ओके, मुझे कुछ लाना है क्या, नक्श ने आगे पूछा। नक्श थोड़ा घमंडी जरूर था, लेकिन हाँ, वो भी जानता था कि किस मौके पर कैसे बिहेव करना है। राधिका ने आयशा को पहले ही समझा दिया था कि वो नक्श को बोल दे कि वो महंगे गिफ्ट्स ना लेकर आए। आयशा ने जवाब में लिखा, देखो आज ही हमने अपनी शादी रजिस्टर करवाई है, तो तुम शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहे हो, तो तुम समझ सकते हो कि आज का दिन कितना खास है। बाकी मॉम ने कहा है कि तुम ज्यादा महंगे गिफ्ट मत लेकर आना, वो एक्चुअली इशिका का हस्बैंड थोड़ा गरीब है ना, तो उसे छोटा नहीं लगना चाहिए। आयशा अच्छे से जानती थी कि उसे नक्श को कैसे भड़काना है। उसके सामने इशिका और उसके पति का जिक्र कर दो, बस उसके बाद में वो उनके खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता था। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तुमने कहा ना कि मैं शादी के बाद पहली बार आ रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लूंगा। और वन मोर थिंग, वो गरीब है मैं नहीं, तो मैं अपने हिसाब से ही सब लेकर आऊंगा, नक्श ने जवाब दिया। आयशा का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। अब उसे आज रात के डिनर और तमाशे का इंतजार था जो वो नहीं बल्कि नक्श करने वाला था। नक्श से बात करने के बाद आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने अपने मन में कहा, आज तुम डिनर के लिए आओ तो सही शिका, उसके बाद कभी मैं तुम्हें राजवंश विला में कदम तक नहीं रखने दूंगी, और मेरे इस प्लान में अनजाने में साथ देगा खुद अभिमन्यु राजवंश। आयशा मन ही मन तैयारी कर चुकी थी कि उसे इशिका के पति के सामने कैसे तमाशा लगाना है। बस देर थी तो आज रात इशिका और उसके पति के डिनर पर आने की।